ओम शांति। हम सभी विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें अपने ही समान मास्टर कल्याणकारी बनाया है। फिर चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, निमित हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे कुमार हैं, कुमारी हैं, चाहे बच्चे हैं, जो भी हैं, हर एक इस विश्व कल्याण के कार्य में महत्वपूर्ण है। जैसे कहेंगे कि एक मशीनरी होती है तो उसमें एक एक स्क्रू की वैल्यू होती है। अगर एक स्क्रू भी ढीला हो जाता है तो जो मशीनरी का कार्य है उसमें अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा की ये विश्व कल्याण की जो मशीनरी है उसमें एक एक आत्मा का पार्ट है और हम सभी केवल सेंटर कल्याणकारी या अपने एरिया के कल्याणकारी या अपने शहर के कल्याणकारी या हम कहें अपने राज्य के कल्याणकारी, देश के कल्याणकारी नहीं, लेकिन बाबा ने विश्व कल्याणकारी हमें कहा है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन मनसा सेवा है। ऐसे तो हम कल्याण का कार्य कई विधियों से करते हैं, वाणी द्वारा बाबा का संदेश देते हैं, आत्माओं को बाबा के समीप लाने की कोशिश करते हैं, उनको बाबा का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, और आजकल बहुत साधन भी हैं, जैसे कि मीडिया के बहुत साधन हैं, तो संदेश अनेकों तक जाता है जरूर, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं तक नहीं जाता है। लेकिन जो मनसा शक्ति है, जो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है, जो शुभ भावना शुभकामना की शक्ति है, वो बड़े ही सूक्ष्म है, लेकिन हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं तक प्रकाश दे सकते हैं, वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। तो हम सभी मनसा सेवा तो करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि मनसा सेवा की विधि है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है तो कई बार हमें संशय होता है। और सेवाएं तो देखने में आती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। कर्मणा सेवा हम करते हैं या वाचा सेवा हम करते हैं, लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं तो ऐसा कुछ प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हम कहेंगे कि साइंस के साधन जितने सूक्ष्म हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके परिणाम हम देखते हैं। आज हम टेलीफोन पर बात करते हैं, लंदन में बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे सामने ही बात कर रहे हैं, देखने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है। ऐसे ही हम टेलीविजन पर देखते हैं दूर के दृश्य या व्यक्ति को बिल्कुल सम्मुख देखते हैं। अभी प्रकृति में भी जैसे ये वायरस फैला हुआ है, कितना सूक्ष्म है, दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन कितना पावरफुल है कि इसने पूरी दुनिया को झुका दिया है, ऐसा कहेंगे। तो ऐसे ही हमारे मन की श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन कार्य करती है अगर हम उसे विधि पूर्वक प्रयोग करते हैं। मनसा सेवा की विधि है कि मनसा सदा ही हमारी श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, निस्वार्थ हो, सदा शुभ भावना शुभ कामना हो, सदा ही दातापन की भावना हो और सदा ही परोपकारी हो, रहम दिल। ये विशेषताएं हमारे मन की भावनाओं में चाहिए, तब हमें मनसा सेवा की सफलता अनुभव होगी। लेकिन होता क्या है कि हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। जिनकी हमारे प्रति शुभ भावना है उनके प्रति तो हम शुभ भावना रखते हैं, या जिनका हमारे प्रति स्नेह होता है उनके प्रति हमारी भावना श्रेष्ठ होती है। लेकिन जिनसे हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं या जिनसे हमारा कोई विरोध का भाव है उनके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, वृत्ति बदल जाती है, और फिर हम मनसा सेवा करते हैं तो जो परिणाम हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। मनसा सेवा करने के लिए हमारी मनसा पावरफुल हो लेकिन कमजोर होती है, उसके कारण है व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प हमारे मन की शक्ति को कम करते हैं। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? किसी ने कोई बात कही, हमें फीलिंग आ गई, अब उस बात को लेकर के हम घंटों सोचते हैं, कई बार हम दिनों तक भी सोचते रहते हैं, या किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया, या कोई पास्ट की ऐसी बातें हमारे जीवन में हो गई जो हम भूल नहीं पाते हैं, किसी के साथ हमारा कुछ हुआ, वो व्यक्ति जैसे ही हमें दिखाई देता है अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प मन में आने लगते हैं, या जीवन की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के क्यों क्या कैसे में हम चले जाते हैं। जैसे कई सोचते हैं माया क्यों आ जाती है, माया को जीतने की इतनी कोशिश करते हैं फिर भी माया आ जाती है, फिर सोचते हैं हमारे संबंधी सहयोग क्यों नहीं देते हैं, हमारे घर वालों की बुद्धि का ताला बाबा क्यों नहीं खुलता है, या जो ये तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, वातावरण है, इसका प्रभाव हम पर पड़ जाता है। तो बाबा ने हमें सभी समस्याओं का हल मुरली के द्वारा बताया हुआ है, सभी के लिए मुरली में उत्तर मिले हुए हैं, हमें इसे हमें प्रयोग करना है। अब माया क्यों आती है तो पता ही है कि माया तो आनी ही है क्योंकि हमें विजयी बनना है। जैसे अगर दुश्मन के बिना कोई कहे कि मैं विजयी हो गया तो कोई उसको विजयी नहीं मानेगा, या पेपर दिए बिना कोई कहे कि मैं एग्जाम पास हो गया तो कोई उसको पास नहीं मानेगा। तो माया आएगी तो वही हमारी विजय का प्रतीक है कि हम विजयी हैं, माया जीत है, इसके लिए माया आती है। फिर हमारे संबंधी ज्ञान में नहीं चलते हैं तो बाबा ने तो हमें समझाया है कि ये वैरायटी आत्माओं का वैरायटी झाड़ है, सभी आत्माओं का पार्ट अलग अलग है, किसी का पार्ट आदि में है, किसी का मध्य में है, किसी का अंत में है, किसी का भक्त आत्मा का पार्ट है, किसी का अज्ञानी आत्मा का पार्ट है, किसी का ज्ञानी का पार्ट है। तो हमें उसके पार्ट को समझना है और हमारा फर्ज क्या है कि हम अगर ऐसी आत्माओं के साथ रहते हैं तो हम अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा उनको सहयोग दें, उनको प्रेरणा दें, शुभ भावना शुभ कामना हम उनको देते रहें तो उनका जब समय आएगा तो अपने आप उनका ताला खुलेगा। और ऐसे बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है। जब हम तमोगुणी वाइब्रेशंस की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप क्यों कमजोर हो जाते हो, क्योंकि आप तो स्वयं परिवर्तक हो, हमें तमोगुणी वायुमंडल को परिवर्तन करना है, हम प्रकृति को वायुमंडल को पावन बनाने वाले हैं, विश्व परिवर्तक हैं, और उसका प्रभाव हम पर आ जाए, हम कमजोर हो जाएं, इसे क्या कहेंगे। अब जैसे आजकल भी जिस तरह का माहौल है, बीमारी के कारण, महामारी के कारण लोगों में भय है, चिंता है, क्या होगा कैसे होगा, अशांति है उनके मन में, टेंशन है, तो ये हमारा कर्तव्य क्या है कि ऐसे समय पर हम भी भयभीत ना हो जाएं, हम भी अशांत ना हो जाएं, यानी उस वातावरण का प्रभाव हमारे पर नहीं आए, लेकिन हम निर्भय होकर रहें, हम शांत रहें, शक्तिशाली रहें, तो हम उन आत्माओं को भी सहयोग देंगे। और छठी आत्माएं आज संसार की, क्योंकि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव है, तो आज मेजोरिटी आत्माएं इस स्थिति में है। तो ये हमारे जो मनसा शक्ति है, इसको हमें इतना शक्तिशाली बनाना है। तो दूसरा, नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो विकारों के वश होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मन पर असर डालते रहते हैं। काम विकार के संकल्प आ गए, और ये मानो किसी के प्रति लगाव है, जैसे कहते हैं काव प्रभाव है, तो ये मन की शक्ति को कई गुना नष्ट करता है। क्रोध में आकर के हमने किसी से व्यवहार किया और उसके बाद जो मन की स्थिति होती है वो भी यही होती है, मैंपन आ गया, मेरापन आ गया। तो नेगेटिव संकल्पों में हमारे मन को कमजोर करने का कहेंगे कि बहुत प्रभाव होता है। ये लीकेज की तरह है, जैसे आप एक बाल्टी में पानी भरते हैं और अगर उसमें नीचे होल है तो क्या होगा, भरेगा नहीं, भरते जाएंगे और वो नीचे से बहता जाएगा। तो हम योग करते हैं, रोज ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, लीकेज होने के कारण मन में वो शक्ति नहीं भरती है। तो हमारे को जो लाइट हाउस की स्थिति होनी चाहिए, बाबा कहता है आपकी मनसा एक सर्च लाइट की तरह हो। जैसे हम कहते हैं ना, एक 0 वॉट का बल्ब होता है, उसकी रोशनी कितनी होती है, एक कमरे को रोशन करेगा, इतना सा प्रकाश होगा कि हम सिर्फ बचते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 100 वॉट का बल्ब जलाएंगे तो अच्छी रोशनी होगी और हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 1000 वॉट का बल्ब जलाएंगे तो एक मैदान रोशन हो जाएगा। और अगर लाइट हाउस है तो वो मीलों तक रोशनी देता है, और जो भी जहाज होते हैं उनको वो रास्ता दिखाता है। तो हमारी मनसा की पावर कितनी है, 0 की तरह है, 100 वॉट की तरह है, या एक लाइट हाउस की तरह है, या सर्च लाइट की तरह है। तो हमें लाइट हाउस माइंड हाउस बनाना है, और उसका सहज साधन है शुभ संकल्पों का खजाना हम बढ़ाएं अपना। और इसका सहज तरीका है कि रोज हमें मुरली सुनना है, जो बाबा ने हमें नियम दिया है। मुरली केवल नियम निभाना नहीं कि भाई हमने सुन लिया, एक नियम निभा लिया, नहीं, लेकिन मुरली को भी एकाग्रता से सुनना है और फिर सारा दिन में विचार सागर मंथन भी करना है। बाबा ने ऐसी क्या बात कही आज मुरली में जो मुझे विशेष लगी, कोई ना कोई पॉइंट ऐसी होती है मुरली में जो हमें खास लगती है कि आज के भी, जैसे कि ये बाबा ने रेल कही, तो उसे ही हम बार बार, क्योंकि व्रत में रहेगी, उसे ही हम बार बार स्मृति में लाए कि ये आज मेरे लिए सारा दिन धारणा करने के लिए है, या आज की मुरली में बाबा ने मुझे क्या स्वमान दिया, वो स्वमान हम बार बार स्मृति में लाए। माना किसी भी तरह से अपने श्रेष्ठ चिंतन को, शुभ चिंतन को हमें बनाए रखना है। नहीं तो हम क्लासेस सुने, आज हमारे पास बहुत है, हम जब चाहें जहां चाहें क्लास सुन सकते हैं, मन थोड़ा ही शोर होता है, व्यर्थ संकों में जा रहा है, इधर उधर की बातों में मेरा मन उलझ रहा है, या नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं मन में, तो कोई क्लास हम लें, हमारे चैनल भी चलते हैं, उसमें भी कार्यक्रम आते रहते हैं। तो किसी विधि से हम मन में ज्ञान को चलाते रहें, यानी ज्ञान बुद्धि चलते रहना चाहिए, यानी हम स्मृति स्वरूप रहें। केवल एक समय मुरली सुनना, ये हमने दादियों को भी देखा, दादी प्रकनी जी को हमने देखा, दादी 4 बार मुरली पढ़ते थे, और रात के सोने से पहले तो दादी का नियम था कि पढ़ना ही है। दादी जानकी को भी हमने देखा कि जब भी उनको समय मिलता था वो मुरली पढ़ते थे। तो कम से कम 2 बार वो मुरली जरूर हमें पढ़ना ही है। और बीच बीच में जब भी हमें समय मिले मुरली को रिवाइज करना है। बाबा पांच स्वरूपों का अभ्यास भी हमें कह रहे हैं, और जितनी बार हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे कि उसमें सभी सोमान समाये हुए हैं, तो वो भी हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। तो मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता, बाबा कहता है एक बाप दूसरा ना कोई, माना एक बाबा में मन एकाग्र हो जाए, इसको बाबा एकांत भी कहते हैं, कि एक के अंत में मेरा मन हो जाए, या फिर कोई शुद्ध संकल्प में हमारा मन स्थित हो जाए। तो जो भी स्थिति हम बनाना चाहते हैं योग में, यदि हम बिंदुरूप स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, हम लाइट हाउस माइट हाउस में स्थित होना चाहते हैं, हम अव्यक्त परिष्कार स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, हम जितना समय उस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, आधा घंटा हम योग में बैठे या एक घंटा योग में बैठे, तो हम लक्ष्य लेकर बैठे कि मुझे अशरीरी स्थिति के अनुभव में रहना है पूरा एक घंटा। और अगर हम एक घंटा उस स्थिति में रहते हैं तो मन इतना पावरफुल हो जाता है कि उस स्थिति में आप किसी भी आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा, उसमें वो शक्ति भर जाती है। चाहे हम मास्टर सर्वशक्तिमान है इसका भी स्वरूप लेकर के बैठ सकते हैं, और ऐसे प्रयोग हम करते रहते हैं। कई भाई बहनों को उसके बहुत अच्छे अनुभव भी हैं। दुनिया में भी एकाग्रता के द्वारा कितनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आज साइंटिस्ट जो भी नई इन्वेंशन लेकर के आते हैं उसके पीछे उनकी एकाग्रता ही होती है, और कितने चमत्कारी साधन मनुष्य को उससे मिले हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक मनोवैज्ञानिक थे, यूरी गेलर, इज़राइल के, उनके बारे में हमने सुना, और सुना भी नहीं, उनका वीडियो भी देखा कि कैसे वे मन को एकाग्र करके घड़ी की सुइयां हैं उसको बिल्कुल एकदम स्टॉप कर देंगे, और फिर संकल्प करेंगे कि घड़ी चालू हो जाए, तो बस एक टिक थोड़ा घड़ी को देखा तो वो सुई वापस चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही कार की चाबी को हाथ में लिया और संकल्प लिया कि चाबी मुड़ जाए, तो थोड़े समय में वो चाबी हाथ में है, मुड़ जाएगी। फिर संकल्प लिया चाबी सीधी हो जाए, तो चाबी सीधी हो गई। और उन्होंने ये दिखाया कि जैसे हम मूंग अंकुरित करते हैं, उसको तो अंकुरित होने में 24-48 घंटे लगते हैं, लेकिन हथेली पर मूंग रख के उन्होंने संकल्प से मूंग अंकुरित कर दिया। तो ये सिद्धियां दिखाई। एक बहन यहाँ आई थी बिजनेस विंग के प्रोग्राम में, उसने भी ऐसे कुछ प्रयोग दिखाए। उसने एक बहन को स्टेज पर बुलाया और उसे कहा कि आपको जो सोचना है आप अपने मन में सोच लीजिए। 5 मिनट दिया उसने सोचने के लिए, और अपनी वो एक सीनियर बहन थी और उन्होंने सोच लिया, और फिर उन्होंने बिना उनके कुछ भी कहे ये बता दिया कि उन्होंने क्या सोचा इन 5 मिनट में, क्या सोचा, जैसे कोई थॉट रीड कर लेता है। और वो सीनियर बहन ने माना कि इन्होंने जो कहा वही मैंने सोचा, बराबर इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने दादी जानकी के विषय में सोचा था और बिल्कुल वही उन्होंने बता दिया। उसे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाए जो मन की एकाग्रता से संबंधित थे। एक एक्सपेरिमेंट और भी था कि उन्होंने एक टेबल पर एक कांच का बल्ब रखा और कहा कि मैं इस बल्ब को अपने संकल्प की शक्ति से फोड़ दूंगी, ये रखा है, मैं इसको टच भी नहीं करूंगी, सिर्फ मैं सोचूंगी कि ये बल्ब फूट जाए। और आप सबके लिए भी मैं कहूंगी कि आप मुझे सहयोग दो, आप भी यही संकल्प करो कि ये बल्ब फूट जाए। माना किसी का भी ये संकल्प नहीं चलना चाहिए कि बल्ब नहीं फूटे। और उसने रखा और सचमुच 1 मिनट के अंदर वो पड़ा हुआ बल्ब फूट गया। तो इसका मतलब मन की शक्ति कार्य करती है, लेकिन वही है कि विधि पूर्वक हम जब मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं तभी हमें उसमें सिद्धि मिलती है। अब मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ नगर में घूम रहा था, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है, भावनाओं का प्रभाव कैसे होता है। तो उसने कहा कि राजा, आप जो प्रजा के बारे में सोचते हैं वही प्रजा आपके बारे में सोचती है। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे मानूं इस बात को। उसने कहा कि हम नगर में हैं, अभी हम भेष बदल कर घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग हमें मिलेंगे, तो हम इसका प्रमाण देख लें। तो देखा कि सामने से एक लकड़हारा आ रहा था और उसके सिर पर लकड़ियों का गठर था। तो जैसे ही राजा ने उसको देखा तो उसके मन में संकल्प चला, माना उसने अपने मंत्री को कहा कि देखो, ये लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटता है, अब ये रोज लकड़ियां काटता होगा और राजे के जंगल नष्ट कर रहा है, ये इसको दरबार में बुलाना, मैं इसको सजा दूंगा। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इससे पूछता हूँ ये आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसने लकड़हारे को कहा कि तुमको एक खबर मालूम है। उसने कहा, क्या? कि हमारे जो राज्य का राजा है उसकी मृत्यु हुई है। तो उसने कहा, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा की परवाह नहीं करता, वो मरे या जिए मुझे क्या फर्क पड़ता है, और ऐसा कह के वो चलने लगा। तो वो मंत्री आया राजा के पास, राजा ने कहा, मैं नहीं मानता, ये तो मूर्ख है। फिर वो आगे चले तो एक बूढ़ी माँ आ रही थी और उसके हाथ में लाठी थी, लाठी लेकर के वो चल रही थी। तो राजा ने जैसे ही उसको देखा उसे दया आ गई और उसने कहा कि इसको कल दरबार में बुलाना, मैं इसकी पेंशन कर दूंगा, ये जब तक जिएगी तब तक आराम से खाए, पता नहीं इसके बच्चे इसकी पूरी संभाल करते होंगे कि नहीं करते होंगे। फिर मंत्री ने इशारा दिया, महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इससे पूछता हूँ। तो उसने वही प्रश्न उस माँ से पूछा कि आपको पता है कि हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा, क्या कहते हो, क्यों मजाक करते हो, ऐसा राजा जो प्रजा का इतना ख्याल रखता है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, वो जुग जुग जिए, और ऐसे कहकर के वो फिर जाने लगी। अब मंत्री ने फिर आया राजा के पास, तो अब राजा समझ गया कि जैसे मेरी भावनाएं थी उनके प्रति, जैसी मेरी वृत्ति थी वैसी ही वृत्ति उनकी मेरे प्रति हो गई। तो बाबा कई बार कहते हैं कि वाणी द्वारा यदि हम किसी को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वृत्ति द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करना, ये सेवा की अब आवश्यकता है। इसीलिए शुभ भावना शुभ कामना की सेवा का महत्व, यानी मनसा सेवा का महत्व है कि कैसी भी आत्मा है लेकिन हमें उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को मुंह से कुछ नहीं कहते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो हम सोचते हमने इनको कुछ तो नहीं कहा, लेकिन हमने मुख से कुछ नहीं कहा होता है लेकिन अपने मन की भावनाओं से, हम वृत्ति से कह जाते हैं, हमारे मन के भाव उनके प्रति अच्छे नहीं होते हैं, तो वो उन पहले पहुंच जाता है भले हम मुख से कहें या ना कहें। इसीलिए बाबा कहता है शुभ भावना शुभ कामना रखो, क्योंकि अगर हमने फिर भी शुभ भावना रखी तो हमारी शुभ भावना उनकी वृत्ति का परिवर्तन कर देगी और उनकी भी वृत्ति बदल जाएगी। तो मनसा सेवा हम करते हैं, हमें पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। तो बाबा कहता है वैरायटी आत्माएं हैं, उसमें वैज्ञानिक हैं जो नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, उसमें वो सतयुग के लिए भी इन्वेंशन कर रहे हैं, उनको भी शक्ति चाहिए सहयोग चाहिए, तो उन आत्माओं की हम सेवा करें। ऐसे ही भक्त आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, जो आम जनता है वो भी है, उन आत्माओं की सेवा करना जिसको जो आवश्यकता है उनके पास हम जाएं, भक्त आत्माओं के पास जाएं, जैसे वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो हम जाकर के उन्हें वो शक्ति शांति जो भी गुण चाहिए जो भी प्रकाश चाहिए वो हम उनको अपने मनसा के द्वारा दें। और जो मनसा सेवा विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, और उनकी विशेषताएं हैं कि वो सदा ही दाता होंगे। जैसे कहा कि वो कभी भी किसी से लेकर के कुछ करने की इच्छा नहीं रखेंगे कि हम इनके लिए इतना करते हैं ये भी तो हमारे लिए कुछ करें, हमने 10 बार किया ये 1 बार तो करें, या कहेंगे कि हम इतना झुकते हैं कुछ तो ये भी थोड़ा झुकें, इस तरह कोई भाव नहीं होगी, मुझे देना है। और दूसरा, वो सदा ही अपने संबंध संपर्क से खुशी देने वाले होंगे, सदा स्वयं भी संतुष्ट होंगे दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे, वो होपलेस केस में भी होप पैदा करेंगे। बहुत लाश आत्माएं हैं मानो जिसके प्रति किसी को कोई आशा नहीं है, लेकिन उसमें भी आशा का संचार कर देना, ऐसे नहीं ये तो है ही ऐसे, जैसे कई बार हम कह देते हैं ना इनका तो कुछ होना ही नहीं है ये तो है ही ऐसे में, इस तरह का वो कभी भी उनका नहीं होगा। तो सदा ही हर आत्मा के प्रति उनकी इस तरह की कल्याण की भावनाएं होंगी, श्रेष्ठ भावनाएं होंगी, और उसके लिए हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है। जैसे कहा कि अपने शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति को हमें बढ़ाना है, और जितना हम बढ़ाते जाएंगे, बाबा कहते हैं अंतिम समय की यही सेवा है, और कोई सेवाएं हम कर नहीं करेंगे, साधन भी काम नहीं कर सकेंगे। ओम शांति।
सबको आशा है, योग का कुंज है योग करो, योग का कुंज है योग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो बड़े दानी बनो, दानी बनो बड़े दानी।